Now you're listening 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है और हर बार की तरह हर गेस्ट में कुछ ना कुछ उनकी खासियत होती है। वो अपने क्षेत्र के खास होते हैं और साथ ही साथ हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो भी किस तरह संघर्षों से आज वो इस पद पे आसीन हैं या जो कुछ लाइफ में अचीव किया है वो कैसे कैसे किया है, क्या तरीका अपनाया, कितनी प्रॉब्लम से जूझे और आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरी कड़ी में आज हमारे बीच में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका हम नाम बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं TN पाठक सर, जिन्हें हम लोग तुंगनाथ पाठक के नाम से जानते हैं, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा की। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने शो में।
थैंक यू।
और जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं से कहा कि सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने माता पिता के बारे में और अपने भाई बहनों के बारे में।
वैसे मेरा मूल निवास बहराइच जिले में विश्वनगर के निकट एक गाँव पाठकुरवा में है। मैं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पैदाइश पाठकुरवा में ही हुई और वहीं से हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, मेरी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के सानिध्य में हुई और शिक्षा के प्रति उनका जो मैंने डिवोशन देखा, जो समर्पण और त्याग की भावना देखी, उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा और वो भावना मेरे अंदर कहीं ना कहीं घर कर गई। मैं चार भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है जो इसकी शादी हो चुकी है और वह अपने घर है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मैंने ग्रामीण अंचल में ही प्राप्त की। हमारे निकट एक विद्यालय खुला था मोक्षद्वार, वहीं से हमने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं गोंडा चला आया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हमने स्थानीय LBS कॉलेज से प्राप्त की। LBS कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे इस कॉलेज से काफ़ी प्रेरणा मिली। मुझे कुछ गुरुजनों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि जिससे मेरे अंदर शिक्षा के प्रति काफ़ी समर्पण की भावना पैदा हुई। मैंने LBS कॉलेज से ही BA और की शिक्षा प्राप्त की। BEd की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेरा सिलेक्शन MEd में हो गया और मैं काला कांकर चला गया। मैं एकमात्र स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ था और मदन मोहन मालवीय कॉलेज काला कांकर से मैंने MEd की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से आने के बाद मैंने स्थानीय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक साल वाइस प्रिंसिपल के पद पर
जी आपने पढ़ाया वहाँ पे
कार्य किया।
बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम आपकी बचपन की तरफ जाते हैं और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया जहाँ के आप रहने वाले हैं बहराइच के विशेश्वरगंज के पास के, तो जहाँ तक हम सभी श्रोताओं को पता है कि बहुत डेवलप एरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में और चीज़ों को जानने में उस वक्त बड़ा अभाव रहा होगा। आज की हम बात करें तो आज इंटरनेट है, बहुत सारे गाइडेंस से बहुत सारे विद्यालय और खुल गए हैं, आपके वक्त में और भी कम रहे हों, तो हम उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि उस वक्त कैसा आपका पढ़ाई को लेकर अप्रोच था। आपने खुद बताया कि आपके पिताजी चूंकि एक टीचर थे तो उनका कितना प्रभाव आप लोगों की पढ़ाई पर पड़ा और आप भाई बहनों ने किस तरह से उस एरिया में रह के भी अपने खुद को पढ़ाई में बेटर रखा।
मैं एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पुत्र था। मेरे पिता बड़े प्रगतिशील विचारों के थे, वह समय समय पर मुझे शिक्षा के प्रति प्रेरित करते रहे, लेकिन हमारा वो जमाना 1965-66 का जमाना गरीबी से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय माता और पिता अधिकांश लोगों के जो है वो अशिक्षित हुआ करते थे, इसलिए उनसे कोई प्रेरणा मिल पाना, बस ये उनके दिमाग में एक ही होता था कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो गरीबी के दिन थे। आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप आप देखते हैं ऐसा हिंदुस्तान के स्वरूप की लोग कल्पना भी नहीं करते थे। जो कुछ शिक्षा मिल जाती थी विद्यालय से उसी में संतोष कर लेते थे और आपका भविष्य उन्हीं शिक्षकों के पर जो है आधारित था। जो कुछ वो बता देते थे, जो कुछ सिखा देते थे, वही हमारे जीवन की प्रेरणा थी। लेकिन एक था माहौल, सच्चाई का था, ईमानदारी का था, कर्तव्य परायणता का था। बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करके, बड़ा ही संघर्ष करने के बाद तक कोई भी जो है बच्चा हाई स्कूल पास करता था। मैं स्वयं अपने परिवार का पहला बालक था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे दिन थे। न विद्यालय थे, विद्यालय के नाम पर आम के पेड़ हुआ करते थे और पेड़ के नीचे बोरा और टाटपट्टियों पर बैठ करके जो कुछ भी एक एक अध्यापक पढ़ा देता था वही हमारी शिक्षा थी। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है काफी संघर्ष करना पड़ता था। उस समय गांव में जो है जहां तक माध्यमिक विद्यालयों की बात है, माध्यमिक विद्यालय भी नहीं थे। दूर सुदूर जो है 3 मील 4 मील की दूरी पर जो है कहीं एक जूनियर हाई स्कूल होता था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नाकाफी था।
यानी आपकी बातों से बहुत साफ जाहिर है कि उस वक्त रिसोर्सेज की कमी थी और जिस तरह की बताया आपने, उस वक्त इस तरह हिंदुस्तान का स्वरूप बिल्कुल नहीं था जो अभी आज हम देखते हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही बात भी है। आपने बताया कि आपके पिताजी चूंकि टीचर भी थे, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी बातों में लगता है कि आप पे भी आया। खेल कूद में आप कैसे थे? बचपना तो सबका बड़ा चंचल भरा होता है।
खेलने कूदने में तो बड़ा मजा आता था लेकिन कोई साधन नहीं था।
कैसे खेल खेलते थे आप?
जब छोटा था तो हमारे यहाँ कबड्डी खेली जाती थी बिना इंस्ट्रूमेंटल, और इसके अलावा हम लोग जो है कपड़े की को लपेट लपेट करके गेंद बनाते थे और उसको पैरों से खेलते थे। बड़ा हुआ वॉलीबॉल खेलने की आदत पड़ी विद्यालय से। आखिर में प्रेमचंद की तरह से जो है गिल्ली डंडा बनाया गया, गांव में रस्सी बुन करके नेट बनाया गया और एक छोटा सा बाल जो है खरीद करके और गांव के बच्चों को लेकर के जो है उसे गांव में वॉलीबॉल खेला जाने लगा। आज भी हमारे वो साथी जो कभी हमारे साथ गांव में उस नेट पर वॉलीबॉल खेलते थे अभी भी मौजूद हैं।
तो टीएन सर, मतलब जिस आया आपने कि रिसोर्सेज खेलने के लिए भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह आप लोग उस तरह कह सकते हैं जुगाड़ जिसे बोलते हैं, जो जुगाड़ कर करके खेलते थे, लेकिन उसका अपना एक अलग मजा होता है।
हाँ, वो तो मजा होता है और वो मजा आज भी उसका एहसास है। खेल में एक खेल और होता था, लच्ची डाड़।
पेड़ों पे चढ़ के
एक दूसरे को पकड़ते थे। और गिल्ली डंडा तो हर बच्चे का लोकप्रिय खेल होता था।
तो कभी किसी की आंख में अगर फोड़ा है तो बताइए, कुछ तो मतलब ऐसे कांड हुआ ही होगा खेलने के दौरान।
नहीं, फूटी तो नहीं, लगी जरूर। अब पता नहीं मेरे सौभाग्य से या उसके सौभाग्य से।
ये तो दुर्भाग्य हुआ ना।
ना लगना तो सौभाग्य है।
हाँ बिल्कुल,
ना लगना तो सौभाग्य है। अब पता नहीं उसके भाग्य से नहीं लगी या हमारे भाग्य से नहीं लगी। अगर लग जाती तो ऐसी कुटाई होती जो शायद जिंदगी भर याद।
बिल्कुल सही आपने कहा। पहले देखिए माँ बाप ऐसे होते थे कि गलती करने पे अपने बच्चों को मारते थे। अभी थोड़ा सा देखने में ये आता है कि बच्चों के लिए लड़ने तो माँ बाप आ जाते हैं, लेकिन हम लोग के भी माता पिता ने हम ही को मारा है जब गलती कभी भी रही है।
हाँ, व्यवहार में एक ये सच्चाई थी, ईमानदारी थी। जैसा आजकल आप लोग टीवी चैनलों पर सुनते होंगे कि कानून गरीबों के लिए होता है
जी,
और एनर्जिकल ड्रिंक जो है पिलाने से कोई बच्चा पहलवान नहीं होता।
बिल्कुल,
स्वाभाविक खेल खेलने से बच्चा होता है। आज की शिक्षक भी अगर हम कभी की ओर जाएं, तो सबसे पहले आज का बच्चा कमरे में कैद हो गया है।
बिल्कुल,
क्यों? खेल के मैदान अपर्याप्त है, बच्चा टीवी और मोबाइल पर बैठ करके अपना खेल करता है और बुद्धि तो बढ़ रही है, शरीर कमजोर होता जाता है। इसीलिए आजकल के साइंटिस्टों का जो है ये एक जो है अनुमान है कि आने वाले दिनों में आदमी का ब्रेन बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन आदमी शरीर से कमजोर होता जाएगा। यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक दुर्भाग्य है।
जी हाँ, क्योंकि शारीरिक जो श्रम होता है वो बहुत ही कम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है।
यहाँ तक का खाने पीने की बात है, न वो तो चीजें उपलब्ध है। आजकल का जो मॉडर्न फूड है वो और आज के बच्चों के लिए, आज के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक बनता जा रहा है।
बिल्कुल
जरूर है। मेरा अनुरोध है आज के माता से कि इस ओर वो ध्यान दें और अपने बच्चे का भविष्य बनाए।
बिल्कुल सही बात है आपने कहा कि अपने बच्चों का भविष्य बनाए। सर, अभी आपने बताया था कि आप पढ़ने के लिए बाहर गए थे, आपने बीएड किया, एमएड किया, किस जगह गए थे आप?
हम प्रतापगढ़ में एक जगह है काला काकर से हमने एमएड की उपाधि ली थी। अपनी क्लास में उस समय केवल 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इसमें चौथे नंबर पर एक मैं भी था। काला काकर एक वास्तव में एक प्रसिद्ध जगह है और हमारी स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ के राजा दिनेश सिंह जो है वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं का बनवाया हुआ वो कॉलेज है। गंगा जी के किनारे काला काकर का वो राजभवन, सुमित्रा नंदन पंत की वो कुटिया जहाँ पर रह करके उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, आज भी शायद आपको देखने को मिल जाएगी
जी।
और वैसा जीवन, एक हॉस्टल में 16 बच्चे और एक ऐसा ग्रामीण अंचल जहाँ पर जो है हमारे आज तो कहीं कहीं पर गोह कहते हैं, कहीं कहीं पर बिछखपड़ा कहते हैं, रात दिन उसके संकट से गुजर करके 1.5 साल किस तरह कटा है
वो आप ही जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप बताएं कि आप काला कांकर गए, वहां से आपने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप वापस गोंडा लौटे। इसी बीच में चूंकि छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो अपने हम श्रोताओं से कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा TN पाठक सर के साथ में, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा के। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट आरजे मोनिका लेकर आती है ज्ञानस्थली बीट्स, जहां होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश की बातें, किस्सा गोई और किताबों पर बातें, शेर व शायरी जिसमें कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी सुनेंगे और जिंदगी के अनसुने सलीके की बातें करेंगे। तो सुनना न भूलिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सो लर्न ग्रो एंड ग्लो विद आरजे मोनिका।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
गाता रहे मेरा दिल,
तू ही मेरी मंजिल।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
गाता रहे करने वाले, अरे प्यार ही करेंगे। जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे।
प्यार करने वाले, अरे प्यार ही करेंगे। जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे।
मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
चलना बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना।
प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी अब कैसी। अरे शाम जा रही है हमको ढलते ढलते समझा रही है।
दूरियां अब कैसी, अरे शाम जा रही है हमको ढलते ढलते समझा रही है।
आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
गाता रहे मेरा दिल,
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका, अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद हैं TN पाठक सर, जो कि मैनेजर हैं विकास निलयम स्कूल गोंडा से। तो जाने से पहले आपने बताया कि आप गए थे बाहर पढ़ने के लिए, उस दौरान जाहिर सी बात है आप रहने वाले बहराइच के विशेश्वरगंज के पास एक गांव के थे, फिर आपने गोंडा से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप बाहर वापस प्रतापगढ़ चले गए। यहाँ से वहां में फर्क आया होगा, आपने 1.5-2 साल जो भी गुजारे होंगे उसमें बहुत कुछ देखा जाना होगा। तो कोई अगर मेमोरीज आप बताना चाहे वहाँ की, कोई अगर संघर्ष बताना चाहे या कोई अचीवमेंट बताना चाहे।
काला काकर वैसे तो एक विकसित कस्बा कह लीजिए, लेकिन गांव के अतिरिक्त और वहाँ कुछ मिला नहीं। ये वो गांव है जहाँ पर आजादी के आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। आज वो तिकोना पार्क आज भी काला काकर। गंगा के किनारे ये ऊंची जगह है, यहाँ पर हैंडपाइप सक्सेस नहीं होते थे, कुओं से पानी भरा जाता था, स्नान के लिए गंगा जी में ही रोज प्रस्थान करना पड़ता था। चूंकि हम लोग जो है एक हॉस्टल था जो है लगभग उसमें 20 कमरे थे, 16 का ही सिलेक्शन हुआ था और 16 लोग जो है हम लोग यहाँ से गए गंगा स्नान करने के लिए उस काला काकर के राजभवन में, जिसकी नींव आज भी जो है गंगा जी के थपेड़ों को झेलती है। हम लोग स्नान करते रहे, लेकिन बाल जीवन बालक भी न कहे और वयस्क, हम लोग गंगा जी में पानी कम था, आगे बढ़ते गए। अचानक क्या हुआ कि हमारा एक साथी जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव था, वह गंगा जी में डूबने लगा। हम लोग बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, गोरखपुर के लड़के, किसी को तैरना नहीं आता था। परिणाम यह हुआ कि वो लड़का गंगा जी की धारा में डूब गया। सब लोग बैठकर रोने लगे। यही सोचा जाने लगा कि वार्डन से क्या जवाब देंगे, उसके माँ बाप से क्या जवाब देंगे। अचानक देखा कि उसकी जो है बॉडी गंगा जी में ऊपर तैरने लगी। हम लोगों ने बगल से एक बांस उठाया और बांस लेकर के हम उसको धीरे 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 उस बॉडी को बाहर लाए। देखा कुछ बॉडी गर्म थी, तो जैसा कि हमें प्राथमिक चिकित्सा में सिखाया जाता है कि अगर कोई पानी में डूबता है तो वो उसके पेट में पानी भर जाता है, हम लोग उसके पेट पर चढ़ कर के उसके पेट का पानी निकाला। निकालने के बाद जो है उसको देखा जो शरीर गर्म है, वहीं से एक जीप अरेंज की और जीप से लेकर के उसे प्रतापगढ़ भागे, जो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था। 80 किलोमीटर ला करके उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 3 घंटे के बाद हमारा सौभाग्य जाग गया। हमारा वो साथी, उसकी आंखें खुल गई। यह घटना आज भी याद है 35 सालों के बाद।
क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी घटना है कि दोस्तों के साथ आप लोग गंगा जी में स्नान करने गए, उसमें आपके एक फ्रेंड को इस तरह से डूबते हुए आपने देखा, बाद में एक बॉडी की तरह वो पानी के ऊपर आ गई और उसके बाद आपको अगर ये आभास हुआ कि अभी ये जिंदा हैं, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि आपने फर्स्ट एड का एक नाम लिया। फर्स्ट एड शायद हम लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, यानी प्राथमिक उपचार हमने नाम तो सुना है लेकिन हमको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड का काम ही होता है जहाँ पे सडन कोई चीज़ हो जाए, वहाँ डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ आसपास के लोग ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी बात से मुझे ये समझ में आता है कि प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है एक इंसान की कीमत का पता होना या किसी भी जान की। आप लोगों ने उनको बचाया, 80 किलोमीटर दूर लेके गए, फिर उनकी तीमारदारी की, 3 घंटे बाद उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। तो ये जो एक इंसानियत वाला पार्ट है, एक भला करने वाला पार्ट है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक विद्यार्थी के जीवन में ये सारी चीज़ें कर करके सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने उस टाइम किया था, लेकिन उस टाइम का असर जाहिर सी बात है लाइफ के इस पड़ाव तक भी आपके साथ में ही होगा। आज भी जहाँ भी मौका पाते होंगे लोगों की हेल्प करते होंगे, क्योंकि वो चीज़ें जब आपने बताया कि उस टाइम में जवानी में आपके साथ ही वयस्क अवस्था में थी, जब आप पढ़ रहे थे किशोरावस्था में थी, तो वो तो आज भी रही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने बड़ा एक अच्छा सफ़र गुजारा कह सकते हैं, या संघर्ष बड़ा भी बोल सकते हैं इसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आप गोंडा आ गए। गोंडा आने के बाद सबसे पहला अगर हम जॉब की बात करें, क्योंकि भाई अब वापस आ गए थे, तो घर वालों को भी होता है कि ठीक है हमने पढ़ा तो दिया है, भाई आपने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, अब बताइए करना क्या है। तो उसके बाद आपने सबसे पहली जॉब के रूप में क्या किया और कहाँ किया?
सबसे पहले हमने यहाँ के स्थानीय सिटी मार्टिस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नौकरी की। कितनी सैलरी मिलती थी उसे छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लगभग 1.5 साल हमने यहाँ पर नौकरी की, और उसके बाद में मेरी जिज्ञासा थी कि जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने आज तक अर्जित किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अगर हम ज्ञान अगर किसी के काम नहीं आता, वो ज्ञान नहीं है। अगर कोई भोजन किसी की सेहत नहीं बनाता, तो उसको वो भोजन नहीं है। इसलिए हमने गोंडा में ही एक विद्यालय खोलने के बारे में सोचा, और यही के साहबगंज बोलने में हमने एक 500 रुपये किराए पर मकान लेकर के हमने विद्यालय की शुरुआत किया। जिस समय मैंने विद्यालय खोला, उस समय मेरे पास केवल 120 रुपये थे। 120 रुपये में ही 55 रुपये का हमने एग्रीमेंट कराया और उस मकान की 9 जुलाई 1984 को हमने विद्यालय का शुभारंभ किया। चूंकि मैं वेदता को बहुत प्राथमिकता देता हूँ, इसलिए ढूंढने लगा। लोगों ने कहा किसी अधिकारी को, मैंने अधिकारी की जगह जो है एक विद्वान आदमी को चुना, और स्थानीय नगर के निवासी पंडित शांति प्रसाद शुक्ला के द्वारा हमने उसको उद्घाटन कराया और विद्यालय का शुभारंभ किया। मेरा सौभाग्य रहा, विद्यालय का सौभाग्य रहा कि इस विद्यालय की स्थापना के समय हमें कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य मिला जिन्होंने विद्यालय की बहुत बड़ी सेवा की। उनमें 3 नाम प्रमुख रूप से है आते हैं। एक है मोतीगंज के निकट एक गांव है पंडित तुरवा, वहाँ की श्री राजेश, स्वर्गीय श्री राजेश पाठक जी, भरतलाल मिश्रा और के पी तिवारी जैसे कर्मठ लोगों का साथ मिला और हमने अपनी यात्रा शुरू की और विद्यालय को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया।
जी, आपने बताया कि आपने विद्यालय की स्थापना कुछ कर्मठ लोगों के साथ मिलकर की, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहते भी हैं कि जब नियत होती है तो रास्ते अपने आप दिखते जाते हैं, खुलते जाते हैं, और आप उस पर कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। आपने विद्यालय कब खोला?
9 जुलाई 1984 को।
9 जुलाई 1984 को, आज इतना समय बीत गया है, आप विद्यालय चला रहे हैं, आपने एक पूरा सफर देखा है अपने विद्यालय का। आज गोंडा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके विद्यालय को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने विद्यालय डाला था तो मन में क्या सोच के डाला था कि आप क्या करने वाले हैं, और आज इतने सालों बाद क्या उन चीजों को आप पूरा होते देख पा रहे हैं जो आपने तब सोचा था?
मैंने जब विद्यालय की स्थापना की और विद्यालय को जब मैंने खोला, तो मेरा पहला उद्देश्य यही था कि जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको क्यों ना प्रयोग में लाया जाए, वो क्यों ना किसी के काम आए। इसलिए मैंने विद्यालय की शुरुआत किया और हम लोगों ने अटूट परिश्रम किया। इस प्रयास में हमने कई शिक्षा प्रणालियों का भी प्रयोग किया, मोटिवेशन, के अलावा बच्चों से आत्मीयता का भाव, एक ऐसा व्यवहार जिससे बच्चे और हमारे में कोई दुराव न हो महसूस हो, मैंने उसका सफल प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ कि आज दर्जनों जो है लड़के हमारे विद्यालय के आईएएस पीसीएस करके आज भी टीएन पाठक जैसा शब्द नहीं भूलते हैं और ये मेरा सौभाग्य है।
क्या बात है। तो आपने बताया कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो आईएएस पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पे भी आसीन हैं, जो कि आपके यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के बारे में बताइए आपने कि ये कॉलेज एग्जैक्ट कहाँ मौजूद है, कितने स्टाफ हैं, किस क्लास तक का आपका कॉलेज है और क्या मान्यता है।
ये विद्यालय बड़गांव पुलिस चौकी के से फैजाबाद सर्कुलर रोड पर स्थित है। उससे पहचान तो स्कूल होती है, लेकिन हम अपनी पहचान बताने के लिए श्री राम नर्सिंग होम का नाम लेते हैं। पहले किसी न किसी चीज का तो सहारा लेना पड़ता है।
बिल्कुल।
मेन रोड से लगभग 50 मीटर अंदर ये विद्यालय स्थित है। विद्यालय में लोअर केजी से लेकर के हाई स्कूल तक शिक्षा दी जाती है। इसमें विद्यालय में लगभग 18 टीचर और 3 जो है फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। विद्यालय में विद्यालय की अपनी 2 निजी बसें हैं जिससे बच्चे उनके घरों से लाए जाते हैं, और विद्यालय के पास जो भी आवश्यक संसाधन होने चाहिए उसको विद्यालय ने अपने प्रयास से उसको सुसज्जित किया है।
जी, तो आपने बताया कि ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो एक बेसिक्स कॉलेज की एक नीड होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि हमारे श्रोताओं को हम बताएंगे कि एक म्यूजिकल ब्रेक का भी टाइम हो चला, आने के बाद हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका विद्यालय किन मायनों में बाकी विद्यालयों से अलग है, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, किस तरह टीचर को आप हायर करते हैं, किस तरह बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको कितनी देते हैं, कल्चरल इवेंट किस तरह के आप कराते हैं बच्चों में उनके सर्वांगीण विकास को लेके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
नहीं सुनेंगे अब बचपन का ताना, अब तो बस गिफ्ट आईवीएफ है जाना। जी हाँ, निसंतान दंपतियों के घर भी अब गूंजेगी खिलकारी। गोंडा में मंडल का एकमात्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आईवीएफ सेंटर, जो देता है आपके आंगन में खुशियों की सौगात। निशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें 1800 120 60 60 60। गिफ्ट आईवीएफ, गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
We'll be right back. हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब उठा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, देखो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उससे मेरा तराना गजब ठा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं टीएन पाठक सर, जो कि विकास निलयम स्कूल के मैनेजर हैं। तो अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले सर आपसे ये जानने के लिए कहा भी था अपने श्रोताओं से कि हम आने के बाद आपसे जानेंगे कि आपका विद्यालय किन मायनों में बाकी विद्यालयों से अलग है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें।
पहली बात तो यह है कि हमारा विद्यालय दिखावे से दूर है। हम हमारे शिक्षकगण यह पूरा प्रयास करते हैं कि स्कूल में किसी भी तरह का दिखावा न हो। आपको अधिकांश है आपको देखने को मिलेगा कि हर विद्यालय में दुनिया भर की चमक धमक, गार्जियन को अबलाइज करने के लिए फर्जी नंबर देना और यह प्रयास करना कि अगर संभव हो सके तो आउट ऑफ 100 वर्ड तक दे देना। ये जितने भी आजकल आपके माफिया के स्कूल हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ए ए ए ए ग्रेड 100 100 100 100, मुझे उन पर दया आती है। कंप्लीट कोई नहीं होता, न शिक्षक होता है कंप्लीट, सिर्फ भगवान को माना जाता है और कंप्लीट दुनिया में कोई नहीं होता है। एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक टीचर जो है वो उसको भी जो है सीख के आना पड़ता है, तब क्लास में पढ़ाना पड़ता है। अगर ये कहे कि हम अपने आप में पूर्ण हैं तो ईश्वर के अलावा और किसी व्यक्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए उन अंकों पर हमें दया आती है। दूसरी चीज, जहां तक टेक्निक का सवाल है, आज के विद्यालय टेक्निक से तो पूरी तरह दूर है। समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपनी भाव भंगिमा भी बदलनी पड़ेगी। हमारे देश में NCERT ऐसी संस्थाएं हैं जो निरंतर इस पर शोध कर रही हैं, उनकी विधियों को अप्लाई करना, स्मार्ट TV, स्मार्ट इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना आज के परिवेश में आवश्यक हो गया है। हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं, हमारे कई कक्षाओं में आपको स्मार्ट TV मिलेगी। हम लगभग 8 साल तक जो है स्मार्ट TV से ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए हमें अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करना पड़ता है और प्रशिक्षित करके उनको हमें वो टेक्निक बताना पड़ता है, तब जा करके हम अपनी शिक्षा विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों की परेशानी, बच्चों से लगाव रखना, उनसे अपने को जोड़ना शिक्षण की का जो है एक सबसे प्रमुख अंग है। जब तक हम अपने आप को जो है उससे जोड़ नहीं पाएंगे तब तक हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। शिक्षा एक मानसिक प्रक्रिया है। जब तक कोई बच्चा मन से नहीं जुड़ेगा, घोड़े को पानी की बाहुली तक तो ले जा सकते हैं लेकिन जबरन पानी नहीं पिला सकते। शिक्षा देने के लिए मन से बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है और जब तक यह गुण हमारे शिक्षकों में नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देगा।
बिल्कुल सही कहा आपने।
हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन जितना एक डेवलप्ड कंट्री में है, लेकिन फिर भी जितना है उतने में ही हम पूरा प्रयास।
ओके, आपने बताया कि स्मार्ट क्लास के थ्रू आप पढ़ाते हैं और ये बहुत सही बताया आपने कि बच्चों के लेवल पे जाके ही उनको पढ़ाया जा सकता है, उनसे घुल मिल के, यानी उनको जान के। आपने शिक्षकों की बात की कि शिक्षक सबसे अहम रोल अदा करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके यहाँ जो शिक्षक रखे जाते हैं, आप उनको किन बिहाफ पे रखते हैं? इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा आप किन चीजों पे फोकस करते हैं कि आपके विद्यालय के शिक्षक में क्या चीजें होनी ही चाहिए?
विद्यालय के शिक्षक में पहला तो यूनिफॉर्म आता है।
यूनिफॉर्म आपके यहाँ शिक्षक को भी है?
हमारे यहाँ साड़ी पहनना अनिवार्य है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर आप एक सत्यनारायण व्रत कथा के लिए एक पंडित को आमंत्रित करते हैं, अगर वो पंडित जींस टॉप पहन के आता है और टाई लगा के आता है, तो क्या वो अपने धर्म का पालन करता है? क्या वो उसका ड्रेस आपको अखरता है या नहीं अखरता है? शिक्षक का एक वेशभूषा होती है, शिक्षक का एक पहनावा होता है, शिक्षक के अपने एक विचार होते हैं। अस्वाभाविक रूप में जब भी कोई चीज दिखाई देती है तो कहीं, इसलिए शिक्षक के लिए ड्रेस कोड सबसे जरूरी है। दूसरी चीज है विषय की योग्यता का ज्ञान। आज मल्टी डायमेंशन एजुकेशन चल रहा है। कोई बच्चा, कोई टीचर मैथमेटिक्स में पारंगत है तो कोई इंग्लिश में है, कोई लैंग्वेज में है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। हमारी आवश्यकता मैथ के लिए है तो हम मैथ की योग्यता का आकलन करते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज के लिए है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हम उसकी योग्यता को जांचने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षक को। दूसरी चीज होती है पंक्चुअलिटी। हम भी शिक्षक हैं, आज हमको जो है 40 साल हो गए यही काम करते करते, लेकिन हम भी अपने आप से जो है अपने आप पे पूर्ण नहीं है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, और हमें आज भी सीखना पड़ता है और आज भी सीख करके क्लास में जाना पड़ता है। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। मैं बाहर जो है जाड़े का दिन था और मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है और जो शायद लोअर के जी की थी, उसने हमसे कहा, गुड मॉर्निंग सर। कहा गुड मॉर्निंग। क्या सर जी, एक बात बताएं। कहा बोलो। उसने कहा, आप गुस्सा मत किया कीजिए, आप जब हंसते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये सीखना लर्निंग एक जो है आजीवन प्रोसेस है, और इसको इससे हमें अपने को हटाना, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कर्म के प्रति विलग करना।
बिल्कुल सही बात बताया आपने, और आपकी बात सुनने के बाद मुझे बड़ा एक अच्छा सा फील आया कि एक छोटी सी बच्ची अगर आपसे आगे कहती है तो उसके बाद भी आप अपनी पर्सनालिटी में ये देखते हैं कि हाँ, क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है, और उसके बाद आप उस पर काम भी करते हैं। इस एज में आके अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप सीख रहे हैं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी बात है कि सच में छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बशर्ते हमको इतना फ्लेक्सिबल होना है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि हाँ, हो सकता है हमारे अंदर भी ये कमी हो, ना कि ये कि नहीं हमको तो सब कुछ पहले से ही आता है, और यही चीज़ शायद फिर आगे बढ़ने नहीं देती है कि आपको जब पहले से सब कुछ आता है तो आपका माइंड को फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं आजीवन विद्यार्थी रहूंगा, सीखता रहूंगा, तो फिर वो कोई जानवर हो, वो इंसान हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो आदमी हो, वो औरत हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप सीखते हैं और सीखते चले जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपके जीवन का हिस्सा है। सबसे अच्छी बात तो ये है। इसी के साथ बच्चों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए महज पढ़ाई तो ज़रूरी नहीं होती है, उनको वैल्यूज सीखनी होती है, उनको दुनियादारी समझनी होती है, उनको साहित्य को समझना होता है, जिसके लिए बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स कराए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, उसका आपके कॉलेज में कितना ध्यान रखा जाता है?
हमारे कॉलेज में वैसे अब तो पाठ्यक्रम में भी आ गया है, डिबेट वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चों में, और उसके माध्यम से बच्चों की योग्यता परीक्षण किया जाता है, उनको सिखाया जाता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उनमें तार्किक जो है तार्किकता का भी जो है भाव लाया जाता है। हम लोग कुछ डेली तो नहीं संभव हो पाता है, लेकिन हम लोग जो है वीकली या हाफ हम लोग इस तरह का जो है सब्जेक्ट दे करके बड़े बच्चों को में ऐसी योग्यता का विकास करते हैं। छोटे बच्चों में अपने को एक्सप्रेस करने की भावना, अपने आप को व्यक्त करने की भावना, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो, हम लोग बराबर यह बच्चों को, और उसमें काफी कुछ बच्चे उसमें हम, जबकि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, लेकिन चोरी छुपके है उस योग्यता का विकास करते हैं। और कभी कभी देख करके तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चों में ऐसी योग्यता का विकास हुआ, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सार्थक रहा।
क्या बात है, ये बड़ी प्यारी बात आपने कही, और कहीं ना कहीं आपको इन बच्चों का ख्याल रहता है कि उनमें तार्किकता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ आती। साथ आपने बताया कि अपने जो भावनाएं होती हैं या जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका पोएट्री भी होती है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है यानी गायन भी होता है, नृत्य भी होता है, और काव्य पाठ भी होता है, ताकि बच्चा हर तरह से सीखे, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये बात तो बहुत अच्छी लगी, और आज इवन बल्कि जो भी कुछ हमने आपसे पूछा आपके कॉलेज के बारे में, आपके बारे में, जान के बहुत खुशी हुई। और आपका जो एक जीने का पैटर्न है, जो तरीका है, वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगा। हमारे इस वक्त बहुत सारे श्रोतागण आपको सुन रहे हैं और उनको काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं और आप हमारे बड़े भी हैं, और बड़े हमेशा मार्गदर्शक हमारे करते हैं।
बीच में एक बात टोकना चाहेंगे आपको।
जी 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 बताइए।
शिक्षा आत्मा से जुड़ी हुई एक चीज है। हमने वो दिन देखा है जब आकाश में उड़ती हुई चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी है, सवेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में दिखाई दिए हैं, उन्हीं को पालने में हमारा जीवन बीत गया है, उन्हीं के साथ खेलने में हमारा बचपन बीत गया है। आज इसीलिए इतना लगाव है उनसे कि चाहे दिन हो या रात हो उनको भूल नहीं पाते हैं।
बिल्कुल।
बड़ी विचित्र बात यह है कि कभी कभी तो जब हफ्तों क्लास नहीं लेते हैं तो कभी कभी रात में स्वप्न में भी उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर
सिखा देते हैं। क्या बात है,
रहते हैं। वो जीवन से इतना भी जुड़ा है, इतना जुड़ गया है कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी नित्य कम से कम 3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ाना जीवन का एक अंग बन गया है, और उसी में हमारी सुख, हमारा सुख है, उसी में हमारी शांति।
क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। 3 से 4 पीरियड पढ़ाना मतलब ये है कि आपके डेडिकेशन को दिखाता है, आपका जो भी झुकाव है शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति एक सिखाने की जो ललक है, वो कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में नज़र आती है और साफ नज़र आती है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप स्वस्थ हो जाएं जल्द से जल्द, और आप बच्चों से और ज़्यादा जुड़ पाएं, और ज़्यादा एफर्ट लगा पाएं, क्योंकि इसमें आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, और हमारी ऐसी मनोकामना है कि ये जल्द ही होगा। और जिस तरह से आप लगे हैं, आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, जो आप जिस सोच के साथ इस काम को करना आपने स्टार्ट किया था 1984 में, वो सोच आपकी पूरी हो 2023-24-25 में, और भी बच्चे ISPCS बन के निकले या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं और कामयाब हो, और एक नाम वो हमेशा याद करें, TN पाठक। ये हमारी आपसे कहेंगे कि एक दुआ है आपके लिए, एक प्रार्थना है कि ये ऐसे ही हो और ज़रूर हो। अच्छा सर, अब ये जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे कि हम हर गेस्ट से करते हैं, कि आप इस वक्त बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है, तो आपको क्या लगता है बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बताइए कि आने वाले दिनों में ये गोंडा वासियों के लिए या इसको सुनने वाले जो लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए क्या बदलाव ला रहा होगा?
उसका बदलाव तो मैं खुद बैठा हूँ। आज मैं गोंडा के सभी विद्यालयों से अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, बच्चों के साथ जुड़े। हमारी बात उन तक पहुंचाने में आपका जो चैनल है एक अद्भुत माध्यम है। आपका प्रयास बड़ा ही सार्थक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और हम लोगों का सहयोग भी यदि आवश्यक हो तो हम इसके साथ जुड़ते जाए। यह हमारे जिले के लिए, हमारे नगर के लिए एक गौरव की, एक आत्म सम्मान की बात होगी। इससे बढ़िया क्या होगा अगर हमारा गोंडा कुछ अलग होगा।
क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसा कि आपने कहा, अगर जरूरत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें जरूरत है, आप सभी की जरूरत है, क्योंकि आप गोंडा वासियों का प्यार ही हमको दिन ब दिन मिलता जा रहा, उसी से ही हम बढ़ रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है कि अपने समाज के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के लिए ऐसी चीज़ों को लाए, ऐसे लोगों से मिलाए ताकि उनको प्रेरणा मिले, वो भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ, उनकी भी काम की चीज़ों को हम बता पाए, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में एक स्माइल लाने का, एक मुस्कुराहट लाने का हम काम करें। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने श्रोताओं से एक बार हम फिर बता दें कि आज हमारे बीच में मौजूद थे तुंगनाथ पाठक जी, जिनको हम सभी लोग TN पाठक के नाम से जानते हैं, जो कि विकास निलियम स्कूल के मैनेजर हैं और साथ ही साथ दो जगह इस स्कूल की ब्रांच है। एक गोंडा में, जैसा कि आपने बताया, सर्कुलर रोड पे है, एक है आर्यनगर गोंडा में। और जिस तरह से हमने सर के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके कॉलेज के बारे में जाना, वो सब कुछ इंस्पायरिंग था। और सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से हम यही अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई कल फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई जिंदगी के बारे में, उनके किस्सों के बारे में, उनके काम के बारे में जानेंगे। सो इसलिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए, आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9936199369।
हेलो दोस्तों, तो क्या कुछ आज नई फरमाइश आई है और क्या कुछ हम एंटरटेनमेंट करने वाले हैं आपके अपने प्रोग्राम गोंडा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी RJ जिमी और डोडो के साथ, जिसमें गोंडा मैसेज मसाला हम सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत से आपके फरमाइशी सॉन्ग। बहुत सारा फन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और हम अंताक्षरी खेलते हैं आरजे जिमी और डोडो के साथ। क्यों डोडो?
बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिमी, हम अंताक्षरी खेलते हैं और बहुत सारा फन और बहुत सारी बातें होती हैं हमारे प्यारे लिस्नर के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में और सुनते रहिए 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
कर हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा मैं, ये जमाना कहाँ, ये समय कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिश है हर जगह, ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिश है हर जगह, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा ऐसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे, दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ, रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ, ये समय कैसा, मुस्कुराहट जैसा, धीरे बारिश है जगह, ये नशा कैसा, डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिश है जगह, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। क्यों समा लगता है घास पर सोया आसमान, ये मस्तियाँ मेरी, मनमानियाँ मेरी, लो मिल गई मुझे आजादियाँ मेरी, ये समय कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिश है जगह, ये नशा कैसा, डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिश गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा, चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा मैं, ये जमाना कहाँ, ये समय कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीरे बारिश है जगह, ये नशा कैसा, डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिश है जगह, गजब का है ये दिन, गजब का है, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।